चूलं चारु बर्हाव चूलं कमपि निखिल सारं गोपी कुमारं वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा धरुण जंब कला धरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। श्रीमद्भगवद्गीता में एक श्लोक है, आत्मौपमेयं सर्वत्र समं पश्यतिर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम् असंयोगमयि वर्तते। इसका अर्थ है कि जो योगी, जो भगवान में मन लगाने वाला साधक अपने आत्मा के की उपमा से सर्वत्र सबके सुख या दुख को देखता है, वो योगी मेरे में वर्तमान रहता है। सुखम वा यदि वा दुखम, आत्मोपमेयं सर्वत्र समं पश्यति, अपनी आत्मा की उपमा से दूसरे के दुख में अपने आप इस प्रकार से ले जाए आदमी कि ये दुख मुझ पर इस प्रकार से आता तो मैं उस समय क्या समझता, क्या फील करता। ये संत तुकाराम के जीवन में एक बात आती है, बच्चे थे वो, पर बचपन से ही संत थे। एक दिन वो एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी उसे ले करके जरा अपना पैर छीलने से लगे, तो माँ ने कहा क्या कर रहे हो। बोले देखता हूँ दर्द होता है कि नहीं। बोले क्यों देखते हो। बोले कल मैं एक पेड़ की छाल उतार रहा था, उसमें से कुछ रस सा निकला, तो मेरे मन में आया पेड़ को दर्द होता है कि नहीं ये पता नहीं। इसका पता कैसे लगे, अपनी छाल उतार के देखूं तो पता लगे दर्द होता है कि नहीं होता। ये तुकाराम के जीवन में बचपन की गाथा आ गई। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रे, पर दुखी उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। नरसिंह जी ने गाया कि वैष्णव कौन है, कहा वैष्णव तो वो है जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा के समान जानता है। तो ये दोनों प्रकार से जागतिक उन्नति के लिए भी यदि हम लोग परस्पर में दूसरे के दुखों का अपने दुखों के समान ही अनुमान करें, कल्पना करें, तो बहुत से दुख जगत के मिट जाएंगे, क्योंकि हमारी उपेक्षा से, हमारी भूल से या हमारी बदनीयत से जो हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं वो फिर पहुंचाना हम बंद कर देंगे। जब हमें मालूम होगा और जब हम उसको फील करेंगे अपने दुख के समान, तब उस दुख का हमें पता लगेगा दुख कैसा होता है। ये मनुष्य बहुत दफे, और बहुत दफे क्या प्राय ही, अपनी स्थिति के अनुसार दूसरे को देखना चाहता है, दूसरे की स्थिति में जाकर नहीं देखता वो। अब जिसके पास खाने को बहुत है और खाते खाते अजीर्ण हो जाता है, एक भूखा आदमी जिसको अन्न नहीं मिला है वो अगर बार बार आ करके मांगता है, तंग करता है, भूखा है, और उस भूखे को क्या पीड़ा होती है इस पीड़ा का उस बहुत खाने वाले को पता नहीं है, अनुभव नहीं हुआ है, वो उसे डांटता डपटता है, बदमाश बताता है, शरारती बताता है, पर उस अवस्था में अपने को ले जाए तब पता लगे कि उस स्थिति में वो क्या सोचेगा। विपत्ति पड़ने पर, विपत्ति में मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है, दुख में किस प्रकार आदमी व्याकुल और विचलित हो जाता है, ये बात उस अवस्था में आए बिना पता नहीं लगता। एक आदमी की घटना है अभी कुछ दिनों पहले की, उसका अर्थ ये नहीं कि बुराई का अपने समर्थन करना है, समर्थन नहीं करना है। बंबई की घटना है, वो एक फर्म है राम रिखदास परसरामपुरिया का बंबई में, ये दो तीन चार महीने पहले घटना है। बस में शाम का वक्त था, 8-1 बजे थे, और उनकी गद्दी में कोई था नहीं, एक दरवान था तो एक नौकर था। उन्होंने देखा कि एक आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए उस गद्दी में से एक पेटी उठा के ले जा रहा है, नीचे उतर रहा है जीने से, खाली पेटी, पेटी नहीं कंबल, कंबल एक कंबल पर वो उठा के ले जा रहा है। तो उस दरवान ने देखा कि ले जा रहा है तो उसको जाके पकड़ लिया। अब वो पकड़ा गया, कंबल लिए हुए, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसे लोग मारने लगे। उन्होंने मारा और लोग, और लोग इकट्ठे हो गए, मार पर मार, मार पर मार, बहुत मारने लगे। उसने कहा भाई मारो मत, मेरी बात सुनो, वो अच्छे कपड़े पहने हुए पढ़ा लिखा आदमी तो मालूम होता था, तो उसने कहा कि मुझे मारो मत। तो बोले छोड़, मार तो लिया, अब तुम्हें पुलिस में देंगे। उसने कहा मेरी बात सुन लो, पुलिस में मत लो, पहले बात सुनूंगे। उसने बताया ये कि मैं सिंध का रहने वाला हूँ और वहाँ से मैं उस स्थिति में यहाँ पर आ गया, और मेरे घर में 10 आदमी हैं, कमाने वाला और कोई है नहीं, जो कुछ वहाँ से लाए थे सब खर्च हो गया, खा चुके, एक जगह नौकरी लगी थी वो छूट गई, अब नौकरी है नहीं, 3 दिन से मेरे घर में बच्चे भूखे, मैं जानता हूँ चोरी अपराध है, मैं जानता हूँ बुरी चीज़ है, पर मुझसे रहा नहीं गया, बच्चों का रोना देख करके मैंने सोचा कहीं से कुछ ले आऊँ, मेरी बुद्धि बिगड़ गई, और मैं कंबल ले चला, कंबल बेच करके जो कुछ मिलता बच्चों को खिलाता। मैं चोर हूँ, तुम लोगों ने मारा ठीक किया, पर मुझे जेल मत भिजवाओ, मेरे बच्चों की क्या दशा होगी। उन्होंने अपने मालिक को फ़ोन किया, मालिक ने कहा नहीं उसे पकड़वाओ मत, पता लगाओ क्या बात है। पता लगाया गया, बात बिल्कुल सच निकली, जो अब वो अपराधी है, पर उस अवस्था में ले जा करके अपने को मनुष्य देखे कि वैसी अवस्था में विचलित हो जाए जब मन, और उनके बाद छोड़िए महाराणा प्रताप, जिस महाराणा प्रताप ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी आन की रक्षा के लिए राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जंगलों में घूमते फिरे, भटकते फिरे, आज उस गुफा में, कल उस गुफा में, और जमीन पर सोए, बच्चों को खाने को ठीक शिकार से नहीं मिला, वो प्रताप, इतनी आन की रक्षा करने वाला प्रताप, इतिहास बताता है एक दिन घास की रोटियां बना के रखी गई, जंगली खाने में आता था। उस रोटी को एक बिलाव खा गया। रोटी रखी थी लड़की के लिए, राजकुमारी के लिए, और रोटी जब राजकुमारी को नहीं मिली, वो सो के उठी तो बड़े जोर से चीख मारने लगी, वो भूखी थी बड़ी भारी। तो महाराणा का मन भूखे बच्चे को देखकर विचलित हो गया। उन्होंने अकबर को चिट्ठी लिखी, ये इतिहास प्रसिद्ध पत्र है उनका, चिट्ठी लिखी और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। चिट्ठी पहुंची अकबर के दरबार में। अकबर ने चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ करके अकबर को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज एक ऐसे पुरुष पर विजय प्राप्त हुई है जो पुरुष आन का बड़ा पक्का था, जो सर्वस्व हो चुका था, जिस पर विजय प्राप्त करना इस प्रकार से बड़ा कठिन था, विजय प्राप्त हो गई। ये बीकानेर महाराज के बड़े भाई वहाँ पर थे, पृथ्वीराज जी, वो हिंदी के दिंगल भाषा के बड़े कवि माने जाते। उन्होंने, यद्यपि वो राजनीतिक चीज़ थी और हिंदूपन को बचाने की चीज़ थी, उन्होंने कहा जरा मैं इस चिट्ठी को देखूं। चिट्ठी, वो वहाँ पर थे दरबार में, चिट्ठी को देख करके उन्होंने कहा ये तो हस्ताक्षर राणा के लिए, राणा ऐसा लिख नहीं सकता। और वास्तव में यही बात, उस समय वो राणा नहीं रहे थे, चिट्ठी लिखी थी उस समय राणा का जो राणापन था उतर गया था, तो वैसे राणा थे भी नहीं। तो कहा राणा की चिट्ठी नहीं है, मैं पूछता हूँ। कहते तुम पूछो। उन्होंने फिर एक बड़ी सुंदर कविताबद्ध एक पत्र लिखा दिंगल भाषा में, उसमें राणा के स्वरूप की याद दिलाई कि ये क्या हो रहा है। जिस एक सूर्य ने क्षत्रिय वंश को अब तक प्रकाशित कर रखा था, वो सूर्य भी अब डूबना चाहता है। जिस जहाज ने क्षत्रिय और हिंदूपन को अब तक पार जो उतार रहा था, वो नाव आज डूबने जा रही, समाप्त हो रही है, क्या बात। ऐसी उत्तेजना भरी चिट्ठी लिखी। राणा ने लिख दिया कि मैं अधीनता नहीं मानता। बचा लिया पृथ्वीराज ने राणा को। लेकिन मैं यहाँ कह ये रहा था, उस लड़की के भूख के दुख से राणा शरीफा आदमी यदि अपनी आन से विचलित हो जाए, तो जिसके हृदय में पिता का स्नेह है, माता का स्नेह है, इस प्रकार का व्यक्ति भूखे बच्चे को देखकर कहीं से कर एक सिर अनाज चुरा के लाता है, तो चोरी अपराध है, निश्चित अपराध है। पर उस अवस्था में पढ़ने पर पता लगता है कि मनुष्य उस अवस्था में क्या करेगा। उस अवस्था में भी उसे मर जाना चाहिए, बात ठीक है। सिद्धांत मानने वाले हम कहेंगे कि मर जाए, चोरी न करे, भूख मर जाए, पर ये बात अपने लिए जब हम करने लगेंगे तब होगा कि हमारा कहना ठीक है। इसीलिए कहा आत्म उपमा सर्वत्र संपशति अर्जुन, अपनी आत्मा की उपमा से। इसका मतलब ये स्थिति अपने में आ जाए, उस समय हम क्या करें, उस समय हमारी बुद्धि क्या करे। इसी प्रकार जो धर्म के बहुत से इस प्रकार के प्रसंग आते हैं, जिन प्रसंगों में मनुष्य ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है, इस प्रकार की अवस्था में आ जाता है दुख की, कि वो विचलित होकर के झूठ भी बोल जाता है, तो वहाँ पर यद्यपि झूठ है, चोरी है, बदमाशी है, इनका कहीं समर्थन नहीं होना चाहिए समाज में, पर एक स्थिति ऐसी होती है जिस स्थिति में मनुष्य बड़े अच्छे अच्छे लोग, बहुत पहुँचे हुए लोग मजबूर हो जाते हैं, उस स्थिति पर काबू पाने में नहीं पा सकते और विचलित हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में किसी के द्वारा जरा सा अपराध हुआ देखकर उसे जीवन भर के लिए अपराधी मान लेना, किसी को दुख में किसी प्रकार की घटना उसके द्वारा बनी देख करके उससे घृणा करने लगना, ये उचित नहीं। मनुष्य को चाहिए कि अपने को उस परिस्थिति में ले जाए उस समय सोचे कि इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता। ऐसी स्थितियाँ बहुत दफ़े आती हैं मनुष्य के जीवन में। एक आदमी है, बीमार हो गया, उसके घर में पैसा नहीं है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, दवा लाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर को बुलाने वाला कोई नहीं है, पथ्य को देने वाला नहीं है। वो आदमी अगर रो करके और दुख में अड़ोसी पड़ोसियों को श्राप भी दे देता है तो वो श्राप क्यों देता है? उसकी वो अवस्था जो है उसे मजबूर करती है, वो उस विचलित तो हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में ये चाहिए मनुष्य को कि इस प्रकार के जो दुखी लोग हैं उनको ढूंढता रहा। ये सेवा जो है ना महाराज, ये सेवा की दुकान नहीं खुला करते। और सेवा का इतना महान क्षेत्र है, बड़ा विस्तृत, दुखियों का पार नहीं और दुखियों के दुख दूर करने की इच्छा अगर कोई में है तो उसके लिए अनंत अनंत उसको क्षेत्र प्राप्त होंगे। बिना विज्ञापन के, बिना अपने को सेवक पने की घोषणा किए, चुपचाप अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ढूंढने पर न मालूम कितने कितनी देवियां विधवा स्त्री है। ये कहना बड़ा, विवाह करने के बाद कह देना बड़ा सरल है, आफत कटी, और उसको दोष देना बड़ा सरल है, आफत कटी, खाने को नहीं है, घर वाले सब उसे कोसते हैं, सास कहती है कि मेरे बेटे को खा गई है घर में आकर, सिर दुखता है, बीमार होती है, कहते हैं बहाना करती है, काम नहीं करना चाहती, खाने को उसे मिलता नहीं, नौकरानी की भांति बर्तन मांज दिया करे और टुकड़े खा लिया करे। उस अवस्था में उसके मन में क्या दुख होता होगा इसकी कल्पना उन लोगों को हो नहीं सकती जिन लोगों को सदा सत्कार मिलता है, जो हमेशा सम्मान प्राप्त करते हैं, जिनको काम नहीं करना पड़ता, जिनको अपने आप सारे आराम के सामान सामने आ जाते हैं, वो इस बात का इसकी कल्पना नहीं कर सकते उस अवस्था में क्या दुख उसको होता होगा। बच्चा छोटा बिलबिला रहा है, उसके लिए दूध नहीं है, पैसा पास में नहीं है, पैसा पास में नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं, गरीब का कौन ध्यान दे? उस समय उस पिता की, उस माता की क्या दशा होती होगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते जिनके पास ये खूब। इसलिए ये कई संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को दुखियों का जीवन बना लिया जानबूझकर, और दुखियों के जीवन में जा करके उन्होंने उनके दुख को अपना दुख बनाया और उनके दुख को मिटाने में अपने सुख को मिटा दिया। इस प्रकार की ये जो साधना है, ये साधना संसार के लिए बड़ी उत्तम साधना है। करने वाले कम लोग हैं ज़रूर, पर आदर्श यदि ये रहे तो बड़ा लाभ होता है। ये बड़ी ध्यान में रखने की चीज़ है, किसी भी दुखी प्राणी पर दोषारोपण करते समय उसकी परिस्थिति पर अपने को ले जा करके देखे, इस परिस्थिति में मैं होता तो मैं क्या करता? अन्न के लिए भूख मरता हुआ आदमी, वो मरता क्या न करता कहते हैं, भूल कर बैठता है। वो भूल उसकी भूल है या उसका उसका वो एक उसकी मजबूरी है? ऐसी अवस्था में अपने यहाँ ऐसे इतिहास आते हैं कि राजा लोग देखा करते थे, अमीर लोग देखा करते थे कि किसको इस प्रकार की कमी है, उसे ढूंढकर चुपके से उसकी इज्जत को बनाए रखकर, उसके मॉरल को न गिराकर चुपचाप उसकी सहायता करते थे, और उस सहायता में अपने आप को प्रसिद्ध नहीं करते थे कि हम सहायता करने वाले हैं। इस प्रकार की सहायता आज बंद हो गई समाज में। आज उत्थान का नाम बहुत है, हाँ वो मैं बेरो हूँ, वो बहुत ऐसे हैं समाज में। इस प्रकार की जो सहायता थी वो व्यक्तिगत सहायता, वो प्राय बंद हो गई। अब संस्थाओं को सहायता होती है, और गवर्नमेंट की योजनाओं को सहायता होती है वो भी होना योग्य है, होनी चाहिए, जहाँ जैसी आवश्यकता है होना चाहिए। पर ये जो आत्मपमें सर्वत्र वाली चीज़ है, व्यक्ति व्यक्ति को देखे और व्यक्ति व्यक्ति के दुख को दूर करने की अपनी अपनी हैसियत के अनुसार चेष्टा करे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सहानुभूति ये नहीं कि उस आदमी को या तो भिखमंगा बना दे और या उस आदमी के साथ बड़ी कठोरता के साथ पेश आवे जिससे वो भूखे मरते मर जाए या गिर जाए, ये ठीक नहीं। तो ये इस प्रकार की स्थिति क्यों आ गई कि ये जो भाव था सब में एक आत्मा है ये बात हम देखना भूल गए और उसके बदले में हमने अपने को सबसे अलग समझा और दूसरों को सबसे हमसे अलग समझा, और दूसरे चाहे दुख पाते रहें, दूसरे असुविधा में रहें, दूसरों के दुख चाहे हमारे सुख के लिए बढ़ते रहें या नष्ट होते रहें, हमें अपना सुख चाहिए, हमें अपनी समृद्धि चाहिए, हमें अपना आराम चाहिए। इस प्रकार की वृत्ति जहाँ समाज के लोगों में आती है और आई, वहाँ क्या हुआ, समाज का दुख सब जगह आ गया, ये कोई सुखी नहीं। क्योंकि जब हम चाहते हमें आराम मिले, सब दुखी हो, उनके दुख के हमें बिल्कुल परवाह नहीं, तो क्या होगा, सभी में ऐसी वृत्ति होगी तो सब दुखी हो जाएंगे। तो इस वृत्ति के बढ़ाने की आवश्यकता है कि सब में हम आत्मा को देखें, सब में हम एक भगवान को देखें, और देख करके अपने आप उस अवस्था में सोचें कि ये अवस्था जो है ये अगर हो तो हमारा क्या हो। तो ऐसी अवस्था के लोगों को ढूंढें, बहुत हैं हिंदुस्तान में तो इस अवस्था के लोग बहुत हैं। ये एक बड़ी समझ ये महत्व की बात है, दुखी आदमी जो होता है वो मानस में कहते हैं विपत्ति काल कर सतगुण निहार, विपत्ति में तो सौगुना स्नेह किया जाए तब वो बराबर का सा ऑर्डिनरी सा मालूम होता है। संपत्ति में अगर हम किसी से न बोलें बगल से निकल जाएं तो उसको राम राम करने वाले हजारों और हैं, नकिया में कोई बात नहीं, उसको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। पर कोई हमारा साथी दुख में पड़ गया हो तो उसकी बगल से निकल जाएं और चाहे ऐसे निकले, उसके मन में ये आएगा कि चूंकि मैं इस समय असमर्थ हूँ, दीन हूँ, दुखी हूँ, इसलिए इस मेरे मित्र ने भी मेरी उपेक्षा की, ये तब इसने झांका तक नहीं भला, उसके मन में एक बड़ा दुख होगा। तो वो क्या चाहता है दुखी आदमी, तीन चीज चाहता है। पहली चीज तो चाहता है वो सहानुभूति करने वाला कोई व्यक्ति, बड़ी उस समय आवश्यकता होती है, बोला आज इसका पता उन लोगों को नहीं है जिनके पास सहानुभूति के संवेदना के हजारों पार आते हैं, उनको नहीं पता लगता। दुखी आदमी है, उसका पुत्र मर गया, घर में कोई नहीं है, एक आदमी के घर में आग लग गई, घर जल गया, कोई उसके कुछ देखने वाला नहीं है, एक आदमी बीमार है, कोई दवा देने वाला कोई नहीं है, एक आदमी को इतना उसके असमर्थता हो गई, इतनी कंगाली आ गई कि वो कपड़ा नहीं पहन सकता, बाहर नहीं निकल सकता। मैंने महाराज देखा है हमारे गोरखपुर के ज़िले में अकाल के समय, हमेशा तो मैं नहीं जाता, स्त्री घर में नंगी बैठी, उसके पास कपड़ा नहीं, स्त्री किमार नहीं खूब, एक दो घरों में नहीं बहुत घरों में, ऊपर से साड़ी फेंकी गई तब वो बेचारी साड़ी पहन सकी। अब वो बेचारी कहाँ जाए, कैसे जाए, किससे मांगे, क्या करे, इस प्रकार की अवस्था समाज में है। तो इस प्रकार की अवस्था में ये बड़ी आवश्यक बात है कि इस प्रकार के दुखियों का दुख दूर करने की भावना हमारे अंदर जागृत हो और ये भावना बढ़े तो दुख बहुत दूर होगा। बहुत सी तो हम बहुत जगह तो उपेक्षा कर जाते हैं दूसरे के दुख की, उपेक्षा करना पाप, और दूसरे के दुख को देखकर और प्रसन्न होना महापाप, और अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देना ये कौन सा पाप है, इसका कोई ठीक नाम नहीं हम लिया जा सकता, ये महापाप से भी बढ़कर चलते। तो दुखी आदमी तीन चीज चाहते हैं, सांघुति कोई करने वाला मिले, पास बैठ कर दूसरे आंसू पहुंचने, इसमें बड़ी दिलासा मिलती है। देखो मेरे से बोला ना, सुदामा के गले में भगवान ने हाथ डाल दिया श्री कृष्ण ने, पूरे के लिए छोड़ दिए भगवान थे क्या थे, पर राजन के निर्माता थे। ये लोगों के लिए एक बड़ी आश्चर्य की बात हो गई कि नंगा भूखा धूल में भरा हुआ एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के राजमार्ग में श्री कृष्ण गले लगते हैं और आंसू बहाते हैं, उसके चरणों को धोते हैं, लोग देख करके चकित हो गए ये क्या है। तो ये गरीब का दुखी का जो सम्मान है और बराबरी का उसके साथ बर्ताव है, ये बहुत बड़ी चीज है। बराबरी का बर्ताव, उसके मॉरल को उठा देना है, वो बहुत बहुत सुखी होगा। किसी अमीर क्या बजा खुशामद करिए, बोले न बोले, और किसी दुखी के साथ आप मीठे बोल दीजिए, वो चाहता है कोई मुझसे बोले, वो चाहता है कोई मुझसे पूछे कि क्या दुख है। एक बार की बात, हिंदू विश्वविद्यालय में गया, माली जी के यहाँ था, तो एक देखने में बहुत बड़े आदमी थे उस समय मशहूर थे, कि बैठे हुए थे, मैं गया तो मुझको वो बात वहाँ पर होने पर, वो अलग विश्वविद्यालय से आगे हम लोग आगे चले गए, वो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जाके वो रोने लगे। वो करीब 35-40 मिनट तक बराबर रोते रहे। मैं कहता रहा भला बताइए क्या बात है, भला बताइए क्या बात है। उनका रोना बंद न हो, सुर्खी मार मार के रोए, बंद हुए तब बोले, भैया ये 6-7 वर्ष के बाद आज मुझे रोने का मौका मिला, रोज रोना चाहता है पर मेरी बाहर की जो परिस्थिति है वो मुझे मजबूर करती है कि तू रोना रो मत। तो रोना दबाना पड़ता है मुझे, किसके सामने हूँ, अपनी एक पोजीशन, झूठी पोजीशन जो बनी हुई है, मैं इतना भी उन्होंने अपना दुख सुनाया तो मैं सहम गया दुख, तो माली जी के पास उनको लेकर के आया, कुछ करना था वो किया करा, उनका दुख तो नहीं मिटा सके हम लोग, लेकिन उनके दुख में माली जी ने भी समय लगाया, 2-3 घंटे समय दिया, उनकी सारी बात सुनी, सुन करके माली जी ने चेष्टा भी की, दिलासा भी दी, उससे कुछ लाभ हुआ, अपना दुख नहीं मिटा, उनको बड़ी सांत्वना मिल गई कि मेरा तो दुख सुनने वाला तो है। तो ये तो उनका है जो सफेद पूर्व दुखी है, ऐसे दुखी हैं जिनको लोग जानते हैं कि दुखी हैं, पर चूंकि वो छोटे हैं, छोटे छोटे किसी और बात में नहीं है, छोटे वो अर्थ में है और अधिकार में है, जात में छोटे नहीं, लेकिन समाज उनकी उपेक्षा करता है, अच्छे लोग उनके बगल से निकल जाते हैं, उनसे बात करने में घृणा का बोध होता है, उनसे मिलने में समनिष्ठ करने की भावना होती है, क्यों मिलेंगे, क्या इनके साथ क्या लेना है, क्या लाभ होगा। पर भगवान जो हैं ऐसे जो उनके पास मिलने से, जो मिलने जाते, मैं जब इन ईसाइयों के चरित्रों को देखता हूँ, महाराज को रानी एलिजाबेथ सेंट बीन, सेंट कैथरीन, सेंट फ्रांसिस, बड़ा मन प्रसन्न होता है कि कैसे महात्मा थे जिन्होंने दूसरों के दुखों को अपना दुख बनाया और खोज खोज कर दुखियों को अपने राज्य को छोड़ा, अपने आराम को छोड़ा, अपने पदों को छोड़ा, और भिखारियों के साथ भिखारी बनकर इन लोगों ने उनकी आजीवन सेवा की। अपने यहाँ से बहुत हुए हैं, अपने यहाँ तो सबसे देते थे। तो मतलब कहने का यह है कि ये साधना दोनों तरह से लाभ देती है, जगत में बड़ा सुंदर आदर्श होता है, और यदि आत्मबुद्धि से या भगवत बुद्धि से हम सेवा करते हैं इस प्रकार की, इस सेवा में बड़ा सुख मिलता है। बोला जो सेवा एहसान एहसान लाभ देती है, जो सेवा बदला चुकाने के लिए एक साई के रूप में की जाती है। जो सेवा अखबारों में प्रकाशित करने के लिए की जाती है उस सेवा का ये महत्व नहीं है, उसमें आनंद नहीं आता। अगर नाम नहीं निकला तो नहीं आनंद, इतना काम किया नाम नहीं निकला। ऐसे इस गांव वाले लोग तो सब नमक हराम और कृतज्ञ हैं, इतनी सेवा हमने की और उन्होंने बदले में हमको जो एड्रेस भी नहीं दिया गया तो हम तो एड्रेस के लिए सेवा थी या सेवा के लिए सेवा थी, ये बड़ा एक समझने का विषय है। बोले इतना हमने काम किया और वोट के जमाने में उनसे अलग हो गए, ये बड़ा कोई सेवा का फल है। ऐसे लोग कौन सेवा करने आ रहे हैं, तो ये सेवा नहीं। सेवा में इस प्रकार सेवा में एक आनंद आता है, सुख मिलता है। बड़ी सुंदर अपने यहां इसकी व्याख्या की है, दया की व्याख्या की है। परेगा बंधु दर देगा मित्रे दृष्टि दिवा सदा आत्मरक्ष बंधु भविष्य परिपिता या फिर नहीं करके वाक्य है। तो कहते हैं कि दया जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो खरीदी या बेची जा सके। दया ये क्या है, किसी भी प्राणी के दुख को देखकर